समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार श्रोताओं, आपके मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक के साथ मैं हूं विमलेंदु पांडे। आज के इस कार्यक्रम में हम वर्षा जल संचयन पर चर्चा करेंगे। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और राष्ट्रीय जल मिशन के निदेशक अर्चना वर्मा। अशोक जी और अर्चना जी, आप दोनों का आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
नमस्ते।
नमस्कार
श्रोताओं, दक्षिण पश्चिम मॉनसून समय पर पहुंच रहा है ऐसा हमारा मौसम विभाग कह रहा है। वर्षा जल संचय से संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप निसंकोच तत्काल हमें फोन करें। हमारे नंबर हैं, आप नोट कर लीजिए, 2331444 और दूसरा नंबर है 2342101050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इस नंबर से पहले 011 डायल करना न भूलें। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए भी सवाल पोस्ट कर सकते हैं। श्रोता व्हाट्सएप के माध्यम से भी स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। ये कार्यक्रम दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। श्रोताओं, जल जीवन के लिए कितना जरूरी है अब ये बताने की आवश्यकता नहीं रह गई है। अब तो ये समझाने की भी आवश्यकता नहीं है कि जल कितना महत्वपूर्ण है। ये तो अब अनुभूति के स्तर पर साफ दिखने लगा है कि अगर हम जल संचय के प्रति गंभीर नहीं हुए तो कल हमारा भयंकर हो सकता है। अर्चना जी।
नमस्कार पांडे जी, ये बिल्कुल सच है और हमारे जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो भी कहते हैं कि अगर हम जल संरक्षण के प्रति सचेत नहीं हुए तो हमारा जो पूरा फ्रेश वाटर यूटिलाइजेबल वाटर जो हम कहते हैं जो हमारे पास उपलब्ध है वो अराउंड 1126 बिलियन क्यूबिक मीटर है और 1180 बिलियन क्यूबिक मीटर जिस रफ्तार से हम प्रगति कर रहे हैं, जिस रफ्तार से हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, पॉपुलेशन की वृद्धि हो रही है और फूड प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो 1180 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है हमारा डिमांड होगा।
जी, 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 बिल्कुल।
तो जब तक हम सचेत नहीं होंगे और जो जल संचय को अगर हम गंभीरता पूर्वक नहीं लेंगे तो हम इंडिया जो है वाटर स्केयर्स नेशन बन सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम पांच चीज जो हम बोलते हैं कि जल संचय के लिए, सिर्फ सप्लाई साइड ही नहीं, जल स्रोतों की बढ़ोतरी ही नहीं या उनका संचय, हाँ, उनको ठीक से उपयोग करना, तो हम उसमें फाइव प्रिंसिपल्स कहते हैं कि रीयूज, रिचार्ज, रिड्यूस और रिसाइकिल और रिस्पेक्ट वाटर। तो ये बिल्कुल आपने जो कहा
जी,
बहुत ही गंभीर विषय है।
इस पर हम आगे और भी चर्चा करेंगे। हमारे नोएडा से श्रोता हैं जय किशन अग्रवाल जी। जय किशन जी नमस्कार।
जी नमस्कार साहब, बिंदु पांडे साहब आपको भी प्रणाम करता हूँ और जो आए उनको भी प्रणाम करता हूँ।
जी अपना सवाल पूछें आप।
मैं सेक्टर 41 J103 नोएडा से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अभी सीवरेज की लाइन और पानी की लाइन जो है हमारी कॉलोनी में पड़ी, तो मैंने उस समय जो है पानी बचाने के लिए हमारे जो महेश शर्मा जी जो सांसद हैं, मंत्री भी रहे, पंकज साहब ने भी लिखा, जो विधायक थे, सीईओ अथॉरिटी को लिखा कि भाई यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए जिससे कि जब ये पूरा सड़क बन जाएगी तो बारिश का पानी सारा वाटर हार्वेस्टिंग में जाए। लेकिन आज का दिन है, सीईओ साहब ने कोई भी सांसद साहब की परवाह नहीं की, ना विधायक की परवाह की ना हमारी परवाह, कोई लेटर नहीं लिखा। साहब अब वो बन गया, पानी तो सारा बहेगा, पानी कैसे संचित होगा। इससे पहले मैंने आकाशवाणी से भी कई माध्यम से फोन कार्यक्रम में कहा कि छोटा मकान बना हुआ है उसमें यह ऐलान हो कि छत से लेकर नीचे जमीन तक एक पाइप डाल दिया जाए और बारिश का पानी नीचे धरती में चला जाए, लेकिन उसके ऊपर भी अभी तक कोई काम और नियम किसी ने बनाया नहीं। बस यही मेरा क्वेश्चन था।
जय किशन जी, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है और सामयिक भी है। कई बार ऐसा होता है कि हम छोटे स्तर पर अगर पानी को समुचित ढंग से उसका उपयोग करना सीख जाएं, तो ये हमारा अपना जीवन ही नहीं बल्कि एक प्रकृति की बहुत बड़ी सेवा होती है। ये प्रकृति के ऋण से उऋण होने की बात होती है। इसी पर हम आपको आगे बताएंगे कि हमारे विशेषज्ञ हैं अशोक कुमार जी, जिस पर इन्होंने बहुत काम किया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर। अशोक जी, जय किशन जी के सवाल के बारे में आप कुछ बताएं।
देखिए, जैसे अतना जी ने बताया
जी,
हमारा वाटर डिमांड और सप्लाई को मैच करना पड़ेगा
जी, जी, जी।
और हमारे लिए एक ही मेजर स्रोत है रेन। ये रेन जो इंडिया में 5-6 महीने के लिए पड़ता है, नॉर्मली जून से दिसंबर तक पड़ता है, उसी रेन को हमको बाकी महीनों में भी यूज करना पड़ता है
जी।
तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब रेन आते हैं वी हैव टू कैच द रेन। इसलिए 2019 से एक कैंपेन भी चला रहा है कि जल शक्ति अभियान, जहां पे 2021 में कैच द रेन के नाम पे बड़ा बन गया था। तो कैच द रेन कैंपेन का स्लोगन भी यह था कि कैच द रेन वेर इट फॉल्स वेन इट फॉल्स, जहां पर से जब भी पर से पानी को संचय कर।
प्रकृति ने बहुत सारी चीजें दी हैं, हम उन्हें पकड़ तो ले हैं अपने आंचल में।
वही तो आप जयकिशन जी ने जैसे बताया, छत में जितना पानी आता है और शहरों में जितना भी पानी आता है, उसी को हम अगर संचय करके अपने एक्वीफर में डालें तो वाटर टेबल भी बढ़ जाएंगे। दूसरा, अभी आजकल देखा जाता है कि कई शहरों में यू हैव दिस अर्बन फ्लडिंग का समस्या आता है, इसको भी कंट्रोल करने के लिए रेन वाटर को हम हार्वेस्ट करके अपने स्टोरेज में एक एक्वीफर में कहीं स्टोर करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए म्युनिसिपैलिटी कई कदम उठाए हैं। कई शहरों में इंसेंटिव्स भी देते हैं और ग्रीन ब्रिगेड करके जैसे ऑर्गेनाइजेशंस उनके में लगाया हुआ है, जो लोगों को बताते हैं कि कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए। तो उन्होंने जो बताया अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स म्युनिसिपैलिटी के नेतृत्व में जो बनाना है, दैट इज अ वेरी अहम स्टेप करना है। और शहर में जितने भी पानी हम रेन से आते हैं उसी को उस शहर में बांध के रखना चाहिए ताकि शहर में वाटर समस्या न हो।
अशोक जी, केंद्र सरकार ने वर्ष 2001 में ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा जल संचयन का योजना बनाई थी, इसकी योजना बनाई थी। इसमें ऐसा कहा गया था कि 100 वर्ग मीटर का अगर कोई छत वाला मकान हो तो वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग उसके लिए अनिवार्य है। इस पर हम गंभीर दिखते नहीं है कहीं से भी, चाहे जनता हो या फिर प्रशासन।
इसमें प्रॉब्लम है कि हम कई शहरों में ये लगा है कि अनलेस दिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इज मेड, उसको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं देते। ये एक साल की बात है, क्योंकि जब ये मकान बनाते हैं और उनके ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लिए कुछ न कुछ बहाना बना के रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसके बारे में भूल जाता है। तो हमको ये मैसेज क्लियरली जाना है कि ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो हम बना कर रखे उसको मेंटेन भी करना है, क्योंकि पत्ते वत्ते गिर के उसको बंद हो जाते हैं और कभी 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 वो सोक पिट हार्डन हो जाते हैं, जिसके वजह से पानी
मेंटेनेंस होता है,
मेंटेनेंस नहीं होता। तो हमें अभी हमने कई बार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और म्युनिसिपैलिटीज के लोग ऑफिसर्स को भी लिखा था कि पहले अप्रैल में जून महीने में बारिश आने से पहले हमको ये तैयार करके रखना है कि जितने भी वाटर पड़े वो पानी वेरी स्मूथली ग्राउंड पर जाए। तो मेंटेनेंस ऑफ एक्सिस्टिंग रेन वाटर स्ट्रक्चर्स भी बहुत जरूरी है।
कि हमारे एक श्रोता है दरभंगा से, मोहन पासवान जी। मोहन पासवान जी, स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में।
धन्यवाद सर, सबसे प्रणाम
जी। आप अपना सवाल बताएं हमें, क्या पूछना चाहते हैं।
मैं पूछना चाहता हूँ कि वर्ण का दल अंक जिन्हें प्राप्त नहीं है सर, वो किस प्रकार से करे जिससे अधिक से अधिक जल संचय किया जा सके सर। दूसरा है सर कि अनुकूल वर्षा होगा तब जल संग्रह अनुकूल होगा सर, इसके लिए पेड़ों का अनुकूल संख्या होना जरूरी है सर। लोग पेड़ काट रहे हैं, पेड़ लगाना भूल रहे हैं सर। पेड़ पूरे देश राज्य में लगाने का प्रबंधन किस प्रकार का होना चाहिए सर, इससे पेड़ अधिक लगे और वर्षा भी अधिक हो सर।
नहीं, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं।
एक और है सर
जी।
सर भारत देश गांव का देश है सर। गांव एवं शहरों में लोगों द्वारा कुआं और तालाब भरे जा रहे हैं सर, जिसके कारण धरती के अंदर जल संग्रह पूरा नहीं हो पाता और चापा कल प्रति वर्ष पानी देना बंद कर देता है सर। ये समस्या कैसे दूर होगा सर?
बिल्कुल बिल्कुल सही अर्चना जी, ये सवाल बड़ा सामयिक है।
मोहन पासवान जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने जो इश्यूज रेज किए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। तो पहला आपका सवाल था कि वर्षा जल संचय कैसे करें। वर्षा जल संचय आप लोग आपने जल शक्ति अभियान कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स का नाम सुना होगा। इस जल शक्ति अभियान के तहत हमने हर जिले में एक निर्णय लिया है कि एक जल शक्ति केंद्र होगा जो कि पब्लिक अवेयरनेस रेज करने में आपको हेल्प करेगा, जो आपको तकनीकी जो सहायता है वो देगा। तो आप दरभंगा के जो जल शक्ति केंद्र हैं वहां पे जरूर संपर्क करें, वो डीएम के अधीन होते हैं। और वहां पे कैसे दो तीन तरह से हम जल संचय कर सकते हैं। एक तो छतों से, छतों पे जो वर्षा का जल आता है उसको हम ये कर सकते हैं किसी टैंक में, या उसके लिए हम कुछ गड्ढा खोद के नीचे पानी को साफ करने के लिए कुछ फिल्टर करने का तकनीक यूज करके उसको संचय कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं जब जिस महीने में आपको पानी का अभाव हो। और दूसरा होता है कि आपके जो घरों में जो जगह है पार्क में या ड्राइववे में, उससे भी उसमें जो पानी एकत्रित होता है उसको भी हम नीचे एक टंकी बना के उसकी साफ सफाई करके उससे भी जल संचय कर सकते हैं। और अनुकूल वर्षा होने की जरूरत तो जरूर है, लेकिन ये आजकल क्लाइमेट चेंज के चलते वर्षा का प्रेडिक्शन थोड़ा सा कष्टप्रद हो गया है। लेकिन अगर कम भी वर्षा हो तो हम जल संचय हो सकता है। और आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छा एक सुझाव दिया है कि पेड़ हैं जो हमारे जो सॉइल है, मॉइस्चर है और जो सॉइल के कटाव को बचाते हैं उसको हम जल शक्ति अभियान में इसलिए हर स्टेट को, हर डीएम को निर्देश दिए हैं कि आप जितना हद तक हो पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ लगाने से जो हमारी सॉइल है उसका कटाव बच सकता है। और आपको सुनकर शायद खुशी होगी कि 136 करोड़ पेड़ फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ मिलकर लगाए गए हैं जल शक्ति अभियान के अंतर्गत, किंतु और पेड़ लगाने की जरूरत है।
अशोक जी, अभी हम बात कर रहे थे पीछे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, तो उसमें क्या सरकार सब्सिडी भी देती है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए?
देखो, इसमें दो तरह के होते हैं। एक तो अर्बन एरियाज के लिए म्यूनिसिपैलिटी की रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसमें घर छतों से पानी जो आता है उसी को संग्रह करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाने के लिए म्यूनिसिपैलिटी थोड़ा बहुत मदद करते हैं। कई जगहों पर टैक्स में कटौती भी देते हैं, 10% रिडक्शन भी जाता है, छूट भी जाते हैं,
लेकिन इसका प्रचार कम होता है।
बट मैं अभी मोहन जी ने अभी बताया ना, इसमें वाटर गांव में करने का
हाँ, हाँ.
हमने कैच द रेन कैंपेन में एक इम्पोर्टेंट स्टेप हमने उस समय किया था कि मनरेगा के अमाउंट से
हाँ.
शहर में गांव में जितने भी तालाब है
हाँ.
उसका गहरीकरण करने के लिए पैसा हाँ. दे रहा था तो सब लोग मिलकर तालाब का कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो पानी ज्यादा स्टोर हो जाएंगे. कई जगह में देखा जाए कि तालाब गंदा हो गया काम पे वो मिट्टी डाल के या कोई गंदगी डाल के उसका कैपेसिटी कम हो जाता है. तो इसके गहरीकरण कराने के लिए भी पैसा मनरेगा से दे रहा है. और इस बार हमने अमृत सरोवर बनाने की बात कर रहे थे तो कई जगह पे अमृत सरोवर बनाने के भी काम हो गया है. और तीसरा ये जो चैनल्स है जिससे जिसमें जिसके द्वारा पानी ताले में आता है उसमें भी कई जगह में इंक्रोचमेंट होता था
हाँ.
तो ये इंक्रोचमेंट हटाने का कार्यक्रम भी कैच द रेन कैंपेन के अंदर किया गया था.
जी. अब ये वर्षा जल संचयन के हमारे पास कई पारंपरिक तरीके हुआ करते थे जो आज शायद हम उनको दोबारा अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे पहले कुआं तो थे ही थे, बावड़ियां थी, वापी थी जिनको तालाब जोहर, और राजस्थान में तो ये कहें कि कुंड या उनको कुंडी बनाते थे, नीचे ऊपर से रख देते थे फिर उसमें से पानी लिया करते थे. आजकल ये सुविधाएं विलुप्त सी हो गई हैं, लोगों को जगाना पड़ रहा है कि आप उठिए और फिर इस तरह का काम कीजिए.
अभी देखो हमारे पूर्वजों ने
जी
पानी के संग्रह करने के लिए कई जगह पे स्टेपल्स बनाए थे. बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्टेपल्स राजस्थान के ऐसे राष्ट्रों में मिल सकते हैं. ये वर्षा जल को संचय करके पूरे साल चलाने के लिए वो रख रहा था. तो स्टेपल्स का भी हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा उसको नंबरिंग करा के उसका लिस्ट बना के उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं. तो पुराने हमारे जो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स देखो कई जगह में मंदिरों के पास
मंदिरों के पास में अक्सर
तालाब रोता है. अभी कई जगह पे वो फिलअप हो गया, वो नष्ट हो गया, लुप्त हो गया. उसको भी वापस दोबारा जिंदा करने के लिए भी हम डायरेक्शन दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं.
हमारे श्रोता है वाराणसी से डॉक्टर बाल लखेंद्र जी. डॉक्टर बाला लखेंद्र जी आपका स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में.
जी बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार
जी. सवाल पूछे अपना.
जी अभी भारत सरकार ने वर्षा जल संचयन के लिए बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए हैं और आज जो आपका ये प्रयास है बहुत प्रशंसनीय है क्योंकि वर्षा जल का संचयन से ही हम अपने जल स्तर को बढ़ा सकते हैं. लेकिन सरकार की जो योजना है, सरकार ने कहा था कि जो भी फ्लैट बनेंगे, जो भी आवासीय परिसर बनेंगे, वहां छतों से जो वर्षा जल है उसका संचयन करने के लिए हम कुछ काम करेंगे. और जब तक हम उनको सर्टिफिकेट नहीं देंगे उन फ्लैट धारकों को या उस स्वामी को, ताकि वो इस तरह की प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे. लेकिन वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में मैं जहां तक देख पा रहा हूं ये नहीं हो पा रहा है, ये पालन नहीं हो पा रहा है. तो इसी समय भारत सरकार की जो अभी हमारे यहाँ मैडम बैठी हैं वो क्या कहना चाहेंगे.
जी अर्चना जी,
देखिए ये जरूर है कि बहुत सारे सिटीज ने ये मैंडेट कर दिया है कि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अगर आपका रूफ कुछ स्क्वायर मीटर से ज्यादा है तो वो मैंडेटरी है. किंतु ये कहना चाहूंगी कि किसी भी नियमावली का जो रूपायन होता है, आप जानते हैं कि पानी जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है और स्पेशली जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये म्यूनिसिपैलिटीज के भीतर आती हैं. तो इसीलिए ऐसा कभी कभी हो, और पब्लिक का भी इसमें जुड़ाव बहुत जरूरी है बिकॉज हम पानी को अभी तक एक फ्री सर्विस ही समझते आए हैं. और जब तक वो पानी हम एक पानी के लिए वो एज एन इकोनॉमिक गुड हम ना समझेंगे, तब तक जब तक वो पब्लिक अवेयरनेस नहीं आएगी, तो इसके लिए हम अंडर द जल शक्ति अभियान हम बहुत सारे वेज में पब्लिक अवेयरनेस रेज करना चाहेंगे क्योंकि पब्लिक का जुड़ाव और पब्लिक को ये इसकी गंभीरता समझनी होगी, तभी इसका रूपायन अच्छे से हो सकता है. सेंटर पे बैठ के हम एक एक म्यूनिसिपैलिटी को तो निर्देश या एडवाइजरी जारी कर सकते हैं किंतु रूपायन तो उनके ही हाथों में है।
अशोक जी, एक सवाल और है कि सपोज कोई मकान बनाना शुरू करता है 100 मीटर के या 100 गज के प्लॉट पे, वो आर्किटेक्ट के पास जाता है नक्शा पास कराने के लिए, उसी समय क्या कुछ ऐसी व्यवस्था है जो एनजीओज हैं या संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं, वो उनको स्ट्रक्चर बनाने से पहले ही वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कोई सुविधा प्रदान कर सके?
देखो, कई जगह पे, कई सिटीज में मैंने देखा, हैदराबाद मेरे को मालूम है, और कई सिटीज में भी
जी, जी।
ये वाटर कनेक्शन और स्वेज कनेक्शन जब देते हैं
जी,
तभी दे इंश्योर दैट वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हो, बना के उन्हें के बाद ही उनको वाटर कनेक्शन देते हैं। जैसे मैंने बताया, कई सिटियों में, शहरों में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट
जी, जी
देने के लिए एक एसेंशियल जरूरी कंडीशन है कि वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हो। बट प्रॉब्लम यह होता है कि वो पहले साल में होता है, उसके बाद में वो उसका मेंटेनेंस नहीं होता है। तो ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो पहले साल ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए बना है वो बेकार हो जाते हैं और काम नहीं करते हैं। तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए हर साल हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि म्यूनिसिपैलिटी से लोग या वहां के लोकल एनजीओ जाके फर्स्ट ये
निगरानी करें,
बारिश आने से पहले एक महीने पहले जाके चेक कर ले कि वो
सिस्टम
काम कर रहे हैं, और उसके जितने भी पत्ते वत्ते गिर के उससे ड्रेन्स में पड़े और
कुछ भी
उसको हटा दे और फ्री फ्लो पानी के लिए सुविधा दे, वो करना है।
धर्मवीर जी हैं दिल्ली से हमारे श्रोता। धर्मवीर जी, आप अपना सवाल पूछें।
पांडे जी नमस्कार, और हमारे मेहमान को नमस्कार।
जी जी जी
सर, मैं दो बातें पूछना चाहूंगा कि जैसे हम अपना मकान तैयार करते हैं, आने वाले टाइम में मकान तैयार होते भी हैं और हो भी रहे हैं
जी,
तो हमें इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि कितना गहरा पानी हमें देना है और कितना कहाँ पे इसकी टैंकी हमें बनानी है, क्योंकि पानी एकदम फ्लोर से तो नीचे जाएगा नहीं, पानी आस्ता आस्ता आएगा, खोक होगा फिर आस्ता आस्ता तैयार नीचे जाएगा। तो क्या ये हम लोग सबमर्सिबल लगवाते हैं 80 फुट 100 फुट 120 फुट, उसकी तो जानकारी है, तो क्या ये प्लम्बर जो है इसकी जानकारी रखता है? क्या सरकार की तरफ से इसके लिए सब्सिडी के ऊपर कोई विचार किया जा रहा है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि सरकार क्यों नहीं अभी से अपने पहले से ही, आप इतना प्रचार कर रहे हैं कि इसके लिए खुद ही ये गली मोहल्लों में जैसे इलाकों में ये पाइप डालने की व्यवस्था करे, और उसके बाद फिर लोग भी जागरूक होंगे, इसके लिए फिर आगे चालू हो जाएगा। तो क्योंकि सारा कंक्रीट है, दिल्ली शहर सारा कंक्रीट नहीं है, तो गांव में कच्ची जमीन रहती है, वहां पानी आराम से नीचे चला जाता है, यहाँ कहीं जाने का व्यवस्था नहीं है, सिर्फ सीवर में पानी जाता है, वेस्ट जाता है।
बिल्कुल जी, अच्छा
जी। जहां तक दिल्ली शहर का की बात है, आपको शायद ये जानकारी नहीं है कि दिल्ली शहर में 11 जल शक्ति केंद्र हैं, जो कि उनके वेबसाइट पे, दिल्ली जल बोर्ड के वेबसाइट पे उनके फोन नंबर्स हैं, जहां आपको तकनीकी सहाय मिल सकता है इन जैसा आपने कहा कि वर्षा जल संचय करने के लिए। तो दिल्ली शहर में इंसेंटिव्स भी है आपको जल संचय के लिए, किंतु इसके लिए जागरूकता जरूरी है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस की भी जागरूकता जरूरी है कि वो इस ये जो दिल्ली शहर के लिए जो ये बना है, ये जो नियमावली है, उसके बारे में जाने और जल शक्ति 11 जल शक्ति केंद्रों को संपर्क करें, जहां भी जिस एरिया का जल शक्ति केंद्र आपके लिए यूजफुल है, उस जगह को संपर्क करके
उसकी सुविधा
का लाभ उठाएं।
अशोक जी, एक हमारे श्रोता है जयपुर राजस्थान से, प्रमोद सिंह जी। प्रमोद जी नमस्कार।
सबको नमस्कार। मेरा निवेदन है, दो क्वेश्चन है। एक तो इसको एजुकेशन में अगर डाला जाए कि जल और वृक्ष में कितना मतलब संबंध है, और कितना पानी हमारा विश्व में मात्र 1 या 2% पीने के योग्य में है। दूसरा सवाल यह है कि जो सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, जिसमें कारें भी डूब जाती है, कि वहीं अपन इसको रिचार्ज कर दिया जाए, ऐसी योजना बनाए चिन्हित करके कि यहाँ यहाँ पानी इकट्ठा होता है, तो काफी हद तक पानी का हम संरक्षित कर सकते हैं। जी
जी अशोक जी, एक बहुत अच्छा है, बच्चों को अगर स्कूल में इसकी शिक्षा दें, तो देखिए आजकल के काफी बच्चे हैं पर्यावरण के प्रति इतनी सचेत हैं कि अपने माता पिताओं या चाचा चाचियों को रोक देते हैं गंदगी फैलाने से। तो अगर बच्चों के टेक्स्ट बुक में ये जल संचय वाली स्थिति हो, उनको समझाया जाए, तो हमारी अगली पीढ़ी तो मेरे ख्याल से ठीक होगी, अच्छी होगी और हमारी धरती भी हरी भरी होगी।
प्रमोद सिंह जी ने आप बहुत अच्छी बात कही
जी।
ये जो लोगों को, बच्चों को, स्कूल के बच्चों को अगर हम जल के बारे में बताएं, उनके उनके जल के प्रति रेस्पेक्ट बढ़ाए
जी,
तो वो वेस्ट भी नहीं करेंगे और संचय करने में कोशिश करेंगे। और मैं कई बार, जैसे आपने बताया, बच्चे लोग अपने माँ बाप को भी
एजुकेट
कर सकते हैं कि वाटर को संभाल कर रखें या वेस्ट मत कीजिएगा। तो ये हम कई राज्यों में लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके वाटर के बारे में ऐसे कंपटीशन कराते हैं, क्विज कंपटीशन कराते हैं, डिबेटिंग कंपटीशन कराते हैं, ताकि लोग पानी के बारे में जानें और पानी के वेस्टेज कम करने के लिए लोगों को जागरूक करें। दूसरा, सड़क के पानी के बारे में बताएं। ठीक है, जब पर्टिकुलरली ये तो प्रॉब्लम शहर में आ रहा है, क्योंकि अर्बनाइजेशन की वजह से कई जगह पे हम टाइल्स डालते हैं, कॉन्क्रीट डालते हैं,
जमीन नहीं रह गया,
तो पानी को जमीन में जाने के लिए रास्ता ही नहीं मिला। तो कई जगह पे हमने ये एडवाइस किया कि दे शुड यूज जो पोरस टाइल्स होते हैं, मतलब इंटरलॉकिंग टाइल्स होते हैं, जिसकी वजह से पानी जा सकता है, नहीं तो कॉम्पाउंड में एक कोने में एक पानी को नीचे जाने के लिए एक रास्ता बना दे, तो ताकि उस कंपाउंड में जितने भी पानी आए वो पानी वही के वही नीचे जाए। तो एक स्लोगन हमने उस समय बताया कि नॉट ए ड्रॉप फ्रॉम माय कंपाउंड, मतलब मेरे कंपाउंड से रोड में, शहर में, रोड में जाने के लिए पानी नहीं होना चाहिए, वो पानी हमारे जमीन पे ही सिंक करे, वही कोशिश करना है।
अभी तो हम लोग मैदानी क्षेत्र की बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा पानी की समस्या पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, वहां पानी संचय बड़ी एक बड़ी समस्या है। तो पहाड़ी इलाकों में गुल और कुल जैसी एक व्यवस्था है, खासकर हिमाचल प्रदेश में, वहां पर जल संचय के लिए क्या विशेष नई तकनीक ईजाद की है?
जल शक्ति अभियान के अंतर्गत हिली एरियाज के लिए स्पेशल ध्यान दिया गया है। हिली एरिया में स्प्रिंग और झरने का जो स्रोत होता है, वो बहुत सारे जो झरनों के स्रोत हैं वो ड्राई अप हो रहे हैं। तो जल शक्ति अभियान के अंदर हमने रिक्वेस्ट किया है स्टेट से कि जो झरनों का जो स्रोत है उसको वापस से उसको ये रिजुविनेट करने का, और प्लस कुछ हिली एरियाज में जैसे लद्दाख है वहां पे वो आइस को कंजर्व करते हैं तो आइस स्तूप बनाते हैं।
अच्छा,
तो ऐसे भी जो भी उनके स्पेसिफिक जो वाटर कंजर्वेशन मेजर्स हैं, तो हिल एरियाज के लिए स्पेशल फोकस है जल शक्ति अभियान में कि आप झरनों का स्रोत ये करें, जो कैचमेंट होता है उसका एनक्रोचमेंट हटाने में सहयोग दें, ताकि जो जल स्रोत जो बंद हो रहे हैं वो खुल पाए।
एक अंत में एक छोटी सी चर्चा जरूर करना चाहेंगे कि भारत में जो कृषि में उपयोग होता है जल का, वो करीब करीब 85 से 90% का होता है और हम केवल 5% पीने योग्य में करते हैं। हम लोग क्या जो कृषि में जल में उपयोग होता है उसको 5% भी घटा दें तो पीने योग्य पानी काफी कुछ मिल सकता है हमें? तो इसी के साथ हम अब इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, समय कम है, 30 सेकंड का समय अभी और है हमारे पास, 30-35 सेकंड का। अशोक जी, आप कुछ बताएं इस बारे में।
देखो, जैसे आपने बताया कृषि में हमारा बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है, तो प्रॉपर इरिगेशन करेंगे तो पानी बचा सकते हैं और सही फसल, जो पानी कम खर्च है उसी फसल को हमको बढ़ावा देना है। और इस साल में प्रेडिक्शन इज दैट ज्यादा इस बार नॉर्मल मानसून होगा, तो हम अगर करेंगे तो अच्छा पानी का सेविंग कर सकते हैं।
श्रोताओं, अब कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्रोताओं के सवालों का जवाब देने के लिए अशोक कुमार जी और अर्चना वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है AIRNSGtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम दोबारा सुनने के लिए देख सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं संपन्न होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे एक और ज्वलंत मुद्दे को लेकर हम आपके साथ चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विमलेंदु पांडे को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।